साईंराम, साईं वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है,
कल्पना कीजिएगा। आप एक आम खा रहे हैं और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, या किसी को आप आम खिलाते हैं घर में, वह महाशय प्रसन्न होकर आपसे पूछते हैं, भाई ये आम लिए कहाँ से आपने? आप दुकान का नाम बताते हैं, वो दुकानदार से आप पूछते हैं, भैया ये आम आप कहाँ से लेके आए? बहुत अच्छे से। वो कहते हैं आम तो इंडिया से आए हैं। इंडिया में कहाँ से? देहरादून से। देहरादून में आम के बगीचे हैं, किसी ने वहाँ पर आम उगाए, किसी ने वहाँ पर उनको देखा भाला, किसी ने वहाँ बीज बोया होगा आम का पहले, तभी तो आम का वृक्ष लगा। किसी ने देख रेख करी, को माली होगा, कोई देखता होगा उसको, किसी ने आम को तोड़ा, इकट्ठे बांधे, पैक किए, किसी ने आप तक पहुँचाए भी होंगे। एक प्रोसेस है। लेकिन आम जब पेड़ पे लगा, उससे पहले किसी ने उसका बीज बोया होगा, तभी तो आम लगे ना। लेकिन वो बीज भी किसी दूसरे आम से आया होगा, तो एक चेन बन जाती है। लेकिन हम कभी इस बात की कल्पना नहीं करते हैं, इस बात के बारे में सोचते भी नहीं है कि जो चीज आज हम खा रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होगा। चलो आम की बात छोड़िए, आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के द्वारा आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वाइबर में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, इंटरनेट में जाते हैं, दुनिया भर की एप्लीकेशन है इसके अंदर, गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब में जाके आप देखते भी हैं, हो सकता है आपको टीवी चैनल भी देखते हों। एक छोटा सा टूल आपके हाथ में है, छोटा सा डिवाइस आपके हाथ में है, छोटा सा यंत्र आपके हाथ में है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आज से 20 साल पहले जब मोबाइल फोन आए होंगे, 20-25 साल पहले बड़े बड़े मोबाइल फोन होते थे, खाली बात ही कर सकते थे बस, आप वो कुछ नहीं होता था। फिर टेक्स्ट मैसेज आने लग गए उसके अंदर, उससे भी पहले मोबाइल फोन नहीं थे, लैंडलाइन थी जो आज भी है। उससे पहले कोई और तरीका था कम्युनिकेशन का। लेकिन इस प्रोसेस में ना जाने कितने लोगों का हाथ रहा होगा, ताकि आज आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, वो आने वाले समय में, आज के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, ना जाने क्या एक चीज आ जाएगी। इस पूरी चीज के अंदर, पूरी चर्चा के अंदर, पूरी यात्रा के अंदर, पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, कितने लोगों का हाथ रहा, कितने लोगों का दिमाग रहा, कितने लोगों की मेहनत रही, हम कभी उनको याद नहीं करते हैं। हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज आपका जीवन इतना अच्छा हुआ है क्योंकि बहुत लोगों ने मेहनत की है पीछे आपके। हम सोचते हैं हमने थोड़े से पैसे खर्च कर लिए, हम ये यंत्र लेकर आ गए, डिवाइस लेकर आ गए, ऐसा नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिएगा, सोचिएगा जरा, जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है, या यूं कहिए कोई स्त्री जब कंसीव करती है, जब बच्चा बनना शुरू होता है, कहते हैं कि पहले 90 दिन में, फर्स्ट 90 डेज में 2500 न्यूरॉन पर सेकंड बच्चे के दिमाग में जाते हैं, उससे दिमाग बनता है। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग, मन की बात नहीं कर रहे, दिमाग की बात कर रहे हैं, उसमें न्यूरॉन होते हैं, उसके द्वारा आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक मैसेजेस जाते हैं। पांव में चोट लगी, आपके ब्रेन को पता लगा चोट लगी, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वो कैसे होता है? न्यूरॉन है, आप यूं समझिए, समझने के तौर के कह रहे हैं कि छोटे से कुछ पार्टिकल है, कुछ चीज़ है जो उस मैसेज को, आपने उंगली को मरोड़ा, ये वो उस मैसेज को मरोड़ा, उस मैसेज को ले जाते हैं सीधा दिमाग तक, उंगली मुड़ गई है, दर्द हुआ, दर्द का अनुभव कराने वाले भी न्यूरन है। तो न्यूरन जो है, कहते हैं पहले 90 दिन के अंदर 2.4 बिलियन न्यूरन डेवलप होते हैं, उससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। जब दिमाग बन रहा है, अगर उस समय ध्यान ना दिया जाए, या जो गर्भवती स्त्री है गर्भ पे ध्यान ना दे, तो बच्चे का दिमाग सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। कई बार कोई कारणवश बच्चे के दिमाग में जितनी क्वांटिटी न्यूरॉन की चाहिए, जो प्रोसेस है पूरा नहीं हो पाता, वो अंडर डेवलप रह जाता है। हम कहते हैं नहीं, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, कई बीमारियों के नाम है, दिमागी हालतें हैं ये। ये जो सारी एक्टिविटी है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। अब डीएनए क्या बोला है भाई? कई बार हम कहते हैं, अरे यार इस बच्चे की शक्ल तो माँ बाप से मिलती है, या बाप से मिलती है, या माँ से मिलती है। देखो ना, आंखें माँ से मिलती हैं, होंठ पिता से मिलते हैं। इस बच्चे का बोलने का तरीका बिल्कुल पिता पे किया है, चलने का तरीका तो हुबू लगता है कि वही चल रहे हूं। सिमिलैरिटीज आपको नजर आती दिखती हैं। ये कहां से आई? पिता का पुत्र है भाई, लेकिन आए कैसे? डीएनए से। साइंटिस्ट क्या करते हैं, डीएनए टेस्टिंग करते हैं, पता लग जाता है कि ये बच्चा आपका है या किसी और का है। आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके बच्चे में भी होगा। साइंटिस्ट आपके डीएनए को स्टडी करके बता सकते हैं, या आपके पिता के डीएनए को पता पढ़ के या स्टडी करके बता सकते हैं, आपके पिता को 40 साल की उम्र में डायबिटिक हो गई थी, डीएनए में लिखा हुआ है, डीएनए से ये रिवील हो रहा है। हम उससे कह सकते हैं जब आप 40 साल के होंगे आपको भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो डीएनए है। बहुत से गुण, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सी चीजें डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है जी, अब जरा सोचिएगा आप, ये डीएनए है क्या चीज? आप बायोलॉजिकली तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन समझाने के तौर पर ये कह सकते हैं भाई, आप सोचिए कि छोटा सा कुछ सेल सा है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन पैक्ड है। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं सेल को तोड़ दूं, उसके अंदर क्या है? जैसे कि आपके हाथ में एक चीनी का दाना है, आप उसको तोड़िए, आधा हो जाएगा, और तोड़िए और आधा हो जाएगा, आप तोड़ते जाइए, माइक्रोस्कोप लेके तोड़िए ताकि आप और छोटा हो गया, टाइनी हो गया, आंखों से नजर नहीं आता, आपको बड़े पावरफुल लेंस चाहिए उसके लिए, आप तोड़ते जाइए, अंत में जाके क्या मिलेगा आपको? विचार कीजिएगा, आपके पास एक सेब का बीज है, एप्पल सीड है, आपने बीज को काटा, अंदर छोटा बीज निकला, और उस बीज को काटा, अंदर और भी निकला, आप उसे निकालते जाइए, अंत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, नजर ही नहीं आएगा आपको, लेकिन उनमें वाइब्रेशन होती हैं। आज के तौर में वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कंडेंस हो जाती है तो मैटर लगता है, वाइब्रेशन मोबाइल हो जाती है तो लिक्विड लगता है, सब कुछ वाइब्रेशन है। तो वो डीएनए क्या है? कुछ तो चीज ऐसी है लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा है। अब सोचा जाए तो हम क्या है? वाइब्रेशन है। अब एक विचार कीजिएगा, एक व्यक्ति के भीतर या एक डीएनए को स्टडी करके हम बताते हैं कि ये गुण दूसरे व्यक्ति में जा रहे हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, फिजिकल करेक्टरिस्टिक, मेंटल एटीट्यूड, बहुत चीज़ें जा रही हैं। अब विचार कीजिएगा आप, एक व्यक्ति है, उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा है कोई चीज की। मान लीजिए आप एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, आप मकान चाहते हैं लेना, बड़ी दौड़ धूप के बाद आपको एक मकान मिलता है जो आप पसंद आता है, मकान खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद आपको लगता है नहीं, ये मकान छोटा है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, आप बड़ा मकान खोजते हैं। कुछ वर्षों के बाद आपको लगता है नहीं, ये मकान बहुत छोटा है मेरे लिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, बेटर हाउस चाहिए, बेटर मकान चाहिए, इतने कमरे चाहिए, इतने बाथरूम चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी लगता है मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी को अब दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। पूरी उम्र आप भागते रहेंगे, आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, एक के बाद एक आती रहेगी। सही बात है या नहीं? इसी प्रकार से जरा कल्पना कीजिएगा, विचार भी कीजिएगा, इसी प्रकार से जब आदमी शरीर को त्यागता है या उसकी मृत्यु होती है, घर वाले उसके भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को उठा कर ले जाते हैं, अपने धर्म के अनुसार या अपने कल्चर के अनुसार, संस्कृति के अनुसार उसको जला देते हैं या दफना देते हैं। लेकिन जो मन जो होता है वो बहुत सटल होता है, वह नहीं मरता। सटल को बोलते हैं सूक्ष्म, वो फ्लोट होता है। अब किसी के अंदर बड़ी तीव्र इच्छा है कोई चीज को पाने की, बहुत तीव्र इच्छा है, अचानक मर गया। अब मन जो है हवा में तैर रहा है या जहां पर भी है, जिस लोक में भी है, जिस स्थिति में भी है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, तृप्त नहीं है। शब्द पे गौर करना बहुत अनिवार्य है, समय वो तृप्त नहीं है, उसको तृप्ति नहीं मिली। अब आप मन की इच्छा पूरी कैसे करेंगे? जब आपके पास शरीर नहीं है तो मन की इच्छा पूरी कैसे होगी? इट कैन नॉट बी डन। बात की गरिमा को समझिएगा, मन तो है, बॉडी नहीं है। माइंड इज देयर, बॉडी इज नॉट देयर। जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, उसकी तृप्ति नहीं होगी, वो भटकता रह जाएगा हवा में। अब ये पता नहीं है अगला जन्म उसका 1 साल के बाद होगा या 1,000 साल के बाद होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, कर्म पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं, जरा विचार कीजिएगा, मान लीजिए हमारे पूर्वज हैं, कोई गुजर गए, हम कहते हैं उनकी बड़ी इच्छा थी, बेचारे तड़पते रह गए चीज के लिए, वो बस इच्छा पूरी कर ही नहीं पाए, गुजर गए। इंटेंस डिजायर जो होती है ना, उसको बोलते हैं वासना। वासना क्या है? वासना खाली सेक्सुअल अर्जेस नहीं है, वासना का मतलब होता है इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा। ठीक है जी। कहते हैं ज्यादातर आत्माएं जो होती हैं, मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक जाती हैं। अब चंद्र लोग जो मून की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, फिलहाल हम उसकी बात चर्चा नहीं कर रहे हैं, समझने के तौर पे समझ रहे हैं। और चंद्र लोग जाती हैं, चंद्रमा जो होता है आप जानते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा अमावस की ओर जा रहा है, और शुक्ल पक्ष होता है चंद्रमा अमावस से लेकर पूर्णिमा की ओर जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि एक पक्ष जो है करीब के दो हफ्ते का होता है, 14 डेज का होता है, जो अंधकार की ओर जा रहा है, एक पक्ष उजाले की ओर जा रहा है। अन्य शब्दों में कीजिए डे एंड नाइट, 14 दिन का दिन हो गया, 14 दिन की रात हो गई, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कोई हमारे पूर्वज से बेचारे गुजर गए, इच्छा दबी रह गई, अब ये पता नहीं हमका जन्म कब होगा, तो वो आत्मा या जीव आत्मा या वो मन तड़प रही है। बॉडी नहीं है, खाली माइंड है, लेकिन वो एनर्जी है, वो वाइब्रेट हो रही है। जब वो वाइब्रेट होगी, आप उनके पुत्र हैं, वो डीएनए आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी वो वाइब्रेशन गूंजेगी। उनकी तड़बाहट, उनके गुण आपके अंदर भी वाइब्रेट होंगे। तो उस वाइब्रेशन को शांत करने के लिए, उस वाइब्रेशन को एक दिशा देने के लिए, उस वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन देने के लिए, तो सबसे पहले हमें अपनी वाइब्रेशन को संतोषजनक स्थिति में लाना होगा। वी हैव टू बिकम कंटेंट। रेसिप्रोकल है। फिर हम मान लीजिए वो बीज है तो हम उसके वृक्ष हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। तो शास्त्रों ने क्या किया, साधु संतों ने क्या किया, पूरे साल में एक समय निकाला जिसको हम पक्ष को बोलते हैं, एक फोर्टनाइट को बोलते हैं पितृ पक्ष, पितृ कहते हैं एंसेस्टर्स। ये फोर्टनाइट हमारी जो है एंसेस्टर्स के लिए है, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, हम उनको शांति देने का प्रयास करें। लोग क्या करते हैं, खाना वाना बना के ब्राह्मणों को खिला देते हैं या कौवे को डाल देते हैं, ठीक है, एक रिचुअल है ये, लेकिन आप समझिएगा वो वाइब्रेशन जो है उनकी इंटेंस डिजायर वाइब्रेट हो रही है, उसको शांत करने के लिए आप पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन वो तब शांत होती है जब आपके अंदर वो वाइब्रेशन शांत होगी। तो आप उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनको प्रेम देते हैं, यू ऑफरिंग योर ग्रेटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। ग्रेटिट्यूड क्या है, आभार प्रकट करना। आज मैं जो हूँ उनके कारण हूँ, आज मेरे पास मोबाइल फोन है, इससे पहले लोगों ने रिसर्च की है, डेवलप किया है, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। आज मैं खाना खा रहा हूँ, किसी ने अन्न को उगाया है, उसका भार किसान का भार प्रकट कर रहे हैं। आज मेरे पास अच्छे मकान है, किसी ने ईंटें बनाई हैं, किसी ने छत बनाई है, उनका भार प्रकट कर रहे हैं। वो तो छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जिनके कारण आज मुझे शरीर मिला है, जिनके कारण आज मेरे पास दिमाग है, जिनके कारण आज मेरे पास बुद्धि है, विचार कीजिएगा, क्या हमें उनका आभार प्रकट नहीं करना चाहिए, क्या हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए। अगर आज वो उस स्थिति में तड़प रहे, हम नहीं जानते तड़प है नहीं तड़प रहे, हम खाली कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसीलिए कहा कि आपका आज एक मकान है, दो मकान है, दस मकान है, आपकी इच्छा खत्म हो गई। जब आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पुरुषों की इच्छाएं खत्म हो गई होंगी। मुक्ति क्या है? मुक्ति इज एंड ऑफ द डिजायर्स। लेकिन कहना बहुत आसान है, दो क्षण में या दो मिनट में मुक्ति नहीं मिल पाती है। द माइंड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड इन टोटैलिटी, विचार कीजिएगा जरा आप। तो इसलिए पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको प्रेम अर्पित करते हैं। लेकिन एंसेस्टर क्या है? पर्सन ऑफ माइंड। माइंड क्या है? बंडल ऑफ डिजायर्स। डिजायर क्या है? इच्छाएं क्या है? डिजायर आर द थीव्स, चोर हैं जो आपके मन की शांति को चुरा लेते हैं। जब मन में शांति नहीं होती क्या होता है? एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। विचार कीजिएगा जरा आप। तो इसलिए मंत्र क्या गया, कहते हैं तर्पयामी। तर्पयामी क्या होता है? उसका रूट शब्द जो है, उसका जो कीवर्ड है, जो उसका उसका मूल मंत्र है, जो मूल उसका शब्द है, वो है तृप्ति। कुछ देर पहले कहा था हमने तृप्ति, वो तृप्त नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, कंटेंट नहीं हुए, संतोष नहीं मिला। तो हम कहते हैं तर्पयामी, अर्थात मैं तृप्ति देता हूं, आपको तृप्त करता हूं, आपके मन को शांत करता हूं, संतोष देता हूं। तो अब ये हमें करना कब चाहिए? भाई पितृपक्ष जो है 14 दिन का, कहते हैं जिस तिथि में उन्होंने शरीर त्यागा उस तिथि में आपको करना चाहिए। लेकिन कहते हैं जब पितृपक्ष की अमावस होती है, उस अमावस को कहा जाता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कहा जाता है महाल्या, दशहरे से पहले वाली अमावस है, सर पितरों के लिए कहा जाता है महाल्या। उस पितृपक्ष के दिन, उस अमावस के दिन सब पितरों को आप तृप्त करें, ये ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड, यू इंडेप्टेड टू देम, क्योंकि उनके कारण आपको जुर्म मिला है, उनके कारण आज सब कुछ आपके पास है। लेकिन एक और तरीका भी होता है, कहते हैं कि हर अमावस तो कर सकते हैं आप, रोज कर सकते हैं, लेकिन एवरी मंथ कर सकते हैं, जब अमावस आए, न्यू मून हो, जब नो मून हो। एक तरीका होता है कि आप उनको इनवाइट करें अपने मन में। हम कहते हैं वो अभी आपने कहा था कि वो चंद्रलोक में जाकर रह रहे हैं। अब चंद्रलोक क्या है भाई? चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो हैं पितर जो हैं आपके मन में हैं। तो हमें क्या करना है? अपने मन में उनको आमंत्रण करना है। अपने मन में उनको आमंत्रण करके उनको अपने दिल में स्थान देना है, उनको प्रेम अर्पित करना है, उनसे वार्तालाप करनी है। अगर आप जो उनके अंदर इच्छाएं थी, वो इच्छाएं आपके अंदर भी हैं, हो नहीं सकता वो ना हो, क्योंकि वाइब्रेशन की कहानी है, खेल है सारा ये। तो आप उस चीज़ को अगर ठीक करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, उनको भी मुक्ति मिलेगी। इसे कहा गया तर्पण करना। वो अलग बात है, हम धूप ग्रास लेते हैं, धूप घास लेते हैं, वो एंटीना का काम करता है, उस लोक के लोगों से वार्तालाप करता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च का विषय है जो हमारे शास्त्रों में पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज के युग में आज के तरीके से आप समझना चाहें तो आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पितृपक्ष में भूलिएगा नहीं, सबको तर्पण कीजिएगा, सबकी सेवा कीजिएगा, सबको प्रेम अर्पित कीजिएगा।